प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
नहीं किया, विशेष मजबूरी में कहानी बनी है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, वो 100 का 100 दोषी है। सबसे पहले पूछेंगे लाइसेंस दिखा भाई, तक लाइसेंस तो नहीं है, सीधा ठोक देंगे, पाछे देखेंगे गलती किसकी थी, बगैर लाइसेंस के तूने गाड़ी चलाई। तो नाम हमारा एक लाइसेंस का काम करता है, उसके लिए महाराज कहते हैं गरीबदास जी बिन इच्छा मारे नहीं। बिन इच्छा मारे नहीं, जा का पाप नहीं लगा, इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास को भी पाप नहीं लगावे। अब आप चल रहे हो आगे कीड़ियों का कि देखो ना दिखते हो तो हमारे बस का ना, जो सामने जैसे कीड़ी चीटे मकोड़े आदि घूम रहे हैं तो कोशिश करें वहां से बचने की। एक से आपने एक किला घूम काना पड़ो अपना उस तो जो कहें इच्छा करनी मारे और ना दिखे सो मरगे, वो आपका पाप नहीं लगा। कब नहीं लगेगा, जब आपको पूरे गुरु से वो लाइसेंस मिल चुका होगा। इसलिए पहले क्या होता था, ये ज्ञान था उनको, पूर्वजों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जब वो बोलना शुरू करते थे गुरुजियों के पास भेज देते, वो सबसे पहले नाम दिलवाते थे उनको कि इन पर भार ना बढ़ेगा। अरीब क्या कह रहा, क्या नाम जब ने जोड़ा होले, यानी ब्याह होले उसका, इतने पापा का ढेर ठोक ले। और उसमें जवान बच्चे को सत्संग का मार्ग समझाना हंसी खेल नहीं है, उसमें तो कुमत इतनी बढ़ जाती है कि समझाए तो भी ना माने, और बचपन से जब बच्चे में ये भावना भर दे तो वो सदा के लिए सुखी रहेगा, भगवान से डरता रहेगा, पाप कर्मों से वंचित रहेगा। एक समय की बात है, एक गांव की लड़की, नकलोई गांव की लड़की, और आटा दुरासी ब्याह रखी, 22-23 साल की आयु उस लड़की की, 24 साल की, और वो दो बच्चे हो रहे, उसको तकलीफ होगी, काफी बुरा हाल सारा दिखा लिया अपने पियर आ रही, एक महीने खातर 5-6 साल से दवाई खा रही और ऐसे उस पर चला नहीं जा, गोडे मुड़े हुए, हाथ ऐसे हो रहे, आंख निकली हुई, इन्हों को जैसे उसकी शक्ल देख लेना, हम उसका फोटो तारना भूल गए उस समय। तो वो क्या हुआ कि हम सोनीपत पाठ कर रहे थे, मैं आपको की बताना चाहूं ये ध्यान से सुनना। तो नकलोई गांव में हमारी संगत है, नाम ले रखा कहिया ने, पाठ भी कराए हैं, तो वो संगत उस लड़की ने लेकर सोनीपत आ गई, वहां से 20 किलोमीटर सोनीपत पड़ता लगभग, हम वहां बग्स फ्रेश है, हमारा एक सेवक पुलिस में हवलदार है, उसके घर पर पाठ चल रहा था। वो सुबह 4-5 जनी उसको पकड़ के ल्यारी, दो जनी दो बहने, और उसको पकड़ के अंदर लेके आई जहां पाठ हो रहा था। तो कहने लगी महाराज जी यह बहुत दुखी होली, हमारे गांव की लड़की है, इसकी भतीजी से वह एक नाम ले रही थी बहन वहां की, मतलब इसके मतलब जेठ की छोरी है। अच्छा, मैं कहने लगा भाई बात सुनो, हम नाम दे हैं कोई इसको, भाई बीमारी ठीक करें, अरे को मेडिकल तो सही को नहीं, डॉक्टर को दिखाओ इसने जाके, कोई बात हो यहां न। बोले जी हम तो दिखा के और कति तंग आ लिए, इसका दवाइये ना लगती, दूनी दुख दूनी काल पावस है। तो मैं कहने लगा इसको परसों लाना, वो परसों फेर लिया जिसने भोग लगना था, मां भी मारे दौरती भगवान बंदी छोड़ के, नाम की दवाई है और यह सारे काम करे, वो नाम लेगी। 20 दिन पाछे वहां पर फिर हम दूसरे तीसरे इतवार का सत्संग करते हैं, और 20 दिन के बाद वो सत्संग था, वह लड़की वहीं पर आ गई। तो जिसके वो पाठ हम कर रहे थे सत्संग करते हैं, वो निर्मला नाम है उस श्रेष्ठ के घरवाली, यानी उस बहन निर्मला का, निर्मला नाम है उस लड़की का। वह निर्मला बोली जी इसने तो आप पहचान रहे हो, पहचानो हो इस लड़की ने। वो लड़की वहां पहुंची और भी संगत आ जाती है सत्संग में। मैं बोला भाई मन्नत ना देखी, उस दिन भी बस एक बार नाम ही दिया था, 10-20 इकट्ठे होकर नाम ही ले गए थे, نہ ولی وہ لڑکی ہے جو نکلوئی والی سنگت لائی تھی نا اٹھا کے اس کو, وہ ہے یہ. وہ اپنے پیروں چلکائی رکتی ٹھیک ہوگی. بول ستگور دیو. میں بولا سچ ہی بتا کی نام سے تیرا؟ روشنی نام ہے جی میرا. ارے یہاں کی ہو نکلوئی کی؟ میں وہ ہوں جی, اس دن میری چاچی لے آئی تھی منہ اٹھا کے. تو ٹھیک کیسے ہوئی؟ کہنے کی جی تیسرے دن میں تو کھیت میں جان لائے گی تھی, میں تو کوئی دوائی کھائی نہ. بول بندی چھوڑ مہاراج کی. پھر اس نے ایک پاٹھ رکھوایا, پاٹھ کروایا. اب کیا ہوا میں بتانا کہتا ہوں تھا, ایک دن میں نکلوئی پاٹھ تھا ایک کسی اور بھگت کا, تو وہاں گیا. وہاں پاٹھ میں گیا ہوا تھا تو وہ لڑکی کی چاچی کہنے لگی, مہاراج جی ایک بار ہمارے چاہ پانی پی کر جائیے آپ. اس کے پڑوس تھے, ان کے پڑوس میں تھی. ہم پہلے گاڑی نہیں تھی ہمارے دورہ, ہاں پیدل ہی آتے جاتے تھے. تو وہاں چلو ہم نے اڈے کا نہیں جانا, اڈے بس اڈے پہ بیٹھنا ہے, ادھر سے نکل لیں گے ہم. وہ آج سواری میں چائے پینے لگ رہے تو اس کی چاچی آ گئی جو اس کو ساتھ لے کر گئی تھی. میں بولا نو بولے جی اس کی بتیجی ہے, وہ مطلب جیٹھ کی چھوری سے وہ روشنی, وہ بیٹھی تھی لڑکی. میں بولا اے دیکھ بندی چھوڑ کے نام تے وہ تھوڑی ٹھیک ہوگی تمہاری. اکھاں جی ہم تو گنے کال پا رہے تھے, کتی سارے دکھا لی تھی اور بٹے وہ بھی آپ روٹی پویا کرتا تھا, اور ہم بھی اتنے دکھی ہو رہے تھے کیا کریں اس کا. آخر میں یہ سوچ لی تھی کہتے اس کی بھگوان ماٹی سنگوا لے, کہتے یا مرے جاوے بھائی کتا جوگی کنارے رہی اس کے, مطلب جنگل کے ہاتھ بھی ہم نہ دھونے پڑتے تھے, ایسی حالت ہو گئی تھی. میں بولا دیکھ بھگوان بندی چھوڑ دیں کتنی دیا کی تھرے پہ, ٹھیک کر دی چھوڑی. تو وہ کے کہ بوڑی بیبے اس کی چاچی نو بولی جی بہ کے وہ نام دیوان جوگی ہوئی تھی, ہم نے تو مجبوری میں دیوانا پڑ گیا رکھ کرم ٹھوکے. اب اتنی بدھی بگاڑ رکھی ہماری, جس نام نے وہ مردہ زندہ کر دی, اور جب پہلے نام ہوتا اس کا بیماری ہوئے کون ہونا ہے. اب ہماری بدھی کا سطر اتنا بگاڑ دیا ان انجان سنتوں نے کہ نام تو جب لو بھائی کتنی کتنا بدھا ہو لو کتنی جڑ دانت بھی نہ رہے بوڑھیا تو جب لے, اور آدمی نہ ہو سکتا ہے نا نام لینے کی, کیوں اس نے بیڑی تو کت فرشت کو نہ شرابتے کو نہیں ٹائم ملتا. یہ ایسا کیوں بن گیا ہمارے سماج میں کہ بچپن میں ہمارے ست سنگ کا ابھاؤ اتنا ہو گیا, اتنا اندھیرا ہو گیا ہی بٹائے تو بھی نہ اٹھتا. سو ست سنگ سن کر بھی پرانی مو پچھلی وہ کیچڑ مشکل تھے, پھر بھی کبھی نہ کبھی ابھرا اس ہے, اتنا میل بھر لیا ہمارا ہم نے اپنے اندر میں. تو یہ کٹے ایسے ستسنگ سننے سے, لیکن ستسنگ کا سننا یہ بھی ایک ایسے کلیوگ میں یہ بھاگوان آتما جو ستسنگ میں آئی ہے نہ بیرا تھا رہے کتنے پنکرم ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں کئی لاکھ آبادی کاروں تک ہوگا, اور یہاں پر ناچنے گانے والے آ جاندے اوئے ہوئے دیکھ اے بھگوان, بلکہ بور کی تو پربند کرنا پڑتا, جا کاڑ ناوڑے بھی کوئی نہ ہو, رام کے نام پہ ڈنورا پیٹتے آنڈے اچھا اچھا پرچے لا رہے ایک ایک جگہ پہ, اور پھر بھی دنیا نہیں سرکتی ارے نے ڈر لگ گئے, کیونکہ وہ پاپ کرم ادھر آن نہیں دیتے ان کو. سب کرمی پرانی کو ہی اس مالک سمے دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, یہ بدھی دیتا ہے کہ مان لے کال نے کوئی گڑبڑ ہو جاؤ گھر میں, اور بچے نے لے کر جاؤ من مانے آل انڈیا میں, اور چھ مہینہ میں پیچھا چھوٹے پیسے لگے اور سمے بھی برباد ہو, اور کام دکان کا تالا لا کر جانا پڑے, گھر کا بند کر کے جانا پڑے, اور زمیندار بھی کتے کا کتا جاؤ, کیونکہ بچہ پرتھم ہے ہمارے لیے اور کام بعد میں پھر کر لیں گے. رام کے نام پہ پانچ منٹ مشکل تھے, چلتا چلتا سکوٹر تو اترے گا اور بیٹھ کے پانچ منٹ میں کیس سنے اس نے, پھر باز لے گا جا بھائی, اور پھر پتا چلا فلانا یار اڑو مر گیا, اب چاٹ لے دن لے گدے کی جونی ناری پاؤ گا, پھر فرصت ایک منٹ کی بھی کوئی نہ. تو یہ تو سمے ہم نے اب نکالنا پڑے گا بھائی, چاہے دکھ پا کے کاٹو اور چاہے سکھ پا کے نکال لو. پھر نام لینے کے بعد پھر اپنا جاپ کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کرتے, اس میں کوئی سمے نہیں ہے کہ سمادھی لا کر بیٹھنا ہے, کیول نام کی کمائی کے دھن کے پربھاؤ سے آپ یہاں سے پار ہو جاؤ گے. اگر آپ کے پاس کمائی نام کی نہیں ہے تو آپ کتھی پار نہیں ہو سکتے, سمادھی کے سمادھی کچھ بھی لا لیو, سمادھی کوئی اور اپلبدھی دیتا ہے اور نام کی کمائی جیو کو پار کرتی ہے. تو اس پرکار نام جو ہے بچپن سے ہی بچوں کو دلایا جاتا ہے. آج ہمارے سماج ہماری 40,000 کے قریب سنگت ہے, اس گھروں میں جا کے دیکھو جو بچہ 3 سال کا وہ بھی نام لے رہا ہے جس نے بولنا سیکھ لیا, और वो मंगलाचरण पढ़ के सुनाता आपको, यहां बच्चे आए हुए मैं सुनवाऊंगा आपको, उन बच्चा के मुंह का नहीं देखोगे। और आपने के कर रखा बच्चा अंग्रेजी में पढ़ा दिखना बढ़िया, अंग्रेजी बोलत बहुत अच्छा, क्योंकि वो आज के समाज में बहुत बढ़िया उसकी इज्जत होगी, इज्जत होगी राम के नाम तय, और सुरक्षा होगी उस बच्चे की भगवान के नाम तय, और धर्म के काम तो उस बच्चे का सुरक्षा गार्ड बन जाओगा, एक कवच बन जाएगा। लेकिन हम वो तरह हैं भूल, और अपने मनमुखी हिसाब से अपने बच्चों को गलत मार्गदर्शन करें। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी कोई माड़ी बात नहीं है, एक तो भाषा ही होता है, हिंदी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी, पर राम के नाम ने क्यों बुला दिया, वो भी साथ साथ एक चैप्टर उस बच्चे का ला दो, और संतों के पास लाओ, उनको नाम दिवाओ, अपने साथ बैठकर आरती का लाओ बेटा, ये भी करो, फिर अपना स्कूल का काम कर लेना। तो इस प्रकार हमारा ये सेट दोबारा समाज को करना पड़ेगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अपने घर में नहीं होनी चाहिए, ये तो कति सबसे नीच कर्म है। हम जोत लावा और घर का आदमी उड़े बीड़ी के सुट्टे मारे, वह जोत के काम करेगी भाई, एक हलवा बनाओ एक बालू रेत गेर दे उसमें, ना बनाते इस अच्छा थे। तो इस प्रकार हमने सारा बिगाड़ रखा सांग, तो ये सारी बीमारी अटैक है, एक परमात्मा के नाम पास्ता करनी पड़ेगी। अरे भाई परमात्मा पवित्र है, पवित्र है होकर बात बनेगी यार, लोग दिखावा काम करण तो नहीं चल रहे काम। तो इस प्रकार आसमान तू बैठ जा, इन्हें लगी रहने इसका तकलीफ है, ये दुखी है बेचारी, इसका पाप कटेगा, देखियो या कति ठीक होगी, क्या हालत हो रही इसकी मालिक के दरबार में। यह लड़का आ रही है सुंडाने तय, और 8-9 साल से तकलीफ है इसके, और कल इसका लड़का है 7 महीने हो गया दिया, कल रोटी खाई ना 20 दिन में 3 रोटी खाई आके, कि बापा उठा ना उठाए तो बिना उठा करती थी। अब देखना इस बंदी छोड़ के दरबार में ऐसे दुख दूर होते हैं, अब क्यों ना यो परिवार मानेगा, रिश्तेदारा तो डंडोरा पीटेगा, अब भाई जगह है तो वहीं पर एकमात्र परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। ऐसे ऐसे 1000 केस आपको गिनवा दूं मैं, ये तो कुछ भी कोई ना, हर नाम को जाड़ा लानते ना कोई स्त्री नो बता दे बार ली के दर्दे भीतर ली के, एक नाम दे भगवान का वो है सबको, और उस समय बेड़ा पार हो जाए। तो नाम तो वही है जो सारे दुखा न मेटे, एक के साथ सब सदा सब साधे सब जा, और माड़ी सी मूल का तो फल फुलागा, वो एक का ना मिल रहा तुमने सही ढंग का, ना तो फिर सारे झंझट के हो सकता है कोई ना। तो धर्मदास को कैसे महाराज समझाते हैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल्याण भगत मैं, धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊंगा, धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊ, गीता जी का पाठ करत हूँ इस विद मुक्ति पाऊंगा, गीता जी का पाठ कर मुक्ति पाऊं, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं, ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल्याण भगत मैं, तीर्थ जल में कछ और मछा, जीव बहुत से रहते हैं, तीर्थ जल में कछ जीव बहुत से रहते, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सच है, उनकी मुक्ति ना हो कष्ट बहुत सा सच,
सतयुग में राम कृष्ण नाथ तब किसका धरते ध्यान भगत में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत एकादशी का व्रत करत हूँ जीव हिंसा कोई करता ना एकादशी का व्रत जीव हिंसा कोई करता शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता सालग्राम की पूजा करता जन्म सुबह और शाम भक्त में अर्ज ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं व्रत करे से मुक्ति हो अकाल पड़े क्यों मरते शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं शिवलिंग पूजा सालग अनजाने चेतन ओ कबूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करो ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं स्नान करत संगारे जल में सूक्ष्म जीव बहुत स्नान करत संगा चौका देवो अवन करो उसमें हो हत्या बे अनुमान भगत में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत सात दीप और नौ खंड ये सपने जैसा खेल सात दीप और नौ सपने जैसा खेल तीन लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है तीन लोक और भवन चतुर कालबली की जेल महाप्रलय में नष्ट हो जाऊं फिर कहाँ करो विश्राम भगत में अर्ज करो ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ धर्म दुआ से खेत संवारा जा सत्य नाम बीज जो बोव फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो बो फल भक्ति का खा काल जीव को उड़ जाता है। देके उल्टा ज्ञान भगत में अर्ज करो ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। इतनी कह कर साहेब कबीर अंतर जान होया जी। इतनी कह कर साहेब कबीर अंतर जान होया अपनी गलती जान धर्म दस फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्म फूट फूट कर भूल में जीवन खोया जी। अब हो गया सच्चा ज्ञान भगत में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। पाठ पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही मन चाया ना तीर्थ नाने वापिस घर ने चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापिस घर ने चल पड़ तज वृंदावन बरसाने ए बंदी छोड़ तेरे पाने को। अब खोजो अपनी जान भक्त में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। रो रो रुदन मचावन लग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचा एक धर्म यज्ञ रचाई दीन दयाल दया के सग आके सुरत जखाई जी। दीन दयाल दया आके सुरत जखा राम पाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भगत में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावन एक धर्म यज्ञ रचाई दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया राम पाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भगत में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता मेरा कल्याण भगत मैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत मैं।
तार बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने उस बोली वाली आत्मा को आके सच्चा रास्ता बताया धर्मदास कि तीर्थ व्रत करने तो भाई छोटा मोटा लाभ जरूर मिल जाएगा पर ये जन्म मरण का दुख ना मिटे और मैं तेरे दोनों दुख मिटूंगा और इतना आसान तरीका बताऊंगा धर्मदास। और जब धर्मदास फिर कहने लगा महाराज जी और तो बात आपकी सारी ठीक से है पर गीता जी के ज्ञान में क्यों कुर भूल जाऊं, उसमें तो इतनी बढ़िया बात लिख रखी है। अब बंदी छोड़ने सोचा भाई यू काल का पूरा दबाव मान रहा है, अंतर ध्यान हो गया वहां पे। इतनी कह कह समझाने के बावजूद भी यह बुद्धि ठिकाना दिए कोई ना, अंतर ध्यान हो गया बंदी छोड़। और उससे पहले वो पूछा था महाराज जी आपने क्यों कर दर्शन दिए यहां के भाई, और फिर कहां मिल जाते हो, मान लो हम आपसे मिलना चाहें। कहते हैं कि भाई कहीं धर्म जैसे सत्संग होते हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रखा हो तो उसमें मैं जरूर आऊं, सोचे किस रूप में आऊं एक बार। इतनी वो कह के अच्छा फिर पूछता है कि महाराज जी एक बात बताओ कि जैसे हम पाठ करते हैं भाई धर्म का काम करते हैं और जैसे गीता जी का पाठ करते हैं रामायण का पाठ करते हैं और दुआ करते हैं प्रार्थना आदि करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं होता? होता है भाई लाभ। इससे क्या होता है कि पाठ करने से जानकारी होती है, किसी भी शास्त्र का पाठ कीजिए उससे ये पता चलेगा कि जैसे आप रामायण का पाठ करते हो आपको पता चला कि रावण जैसे निकम्मे काम नहीं करने चाहिए थे, आचरण हो तो भाई भी विक्षण भरत जैसा हो, भाई आपस में प्रेम भाइयों का हो। जब उसकी मां ने न्यू कह राम की खातर राज मांगा और राम को जो है भरत की खातर राज मांगा और राम को दो छोटा दे दिया, उसमें कहते हैं भरत अपने मामा के जा रहा था, वापस आया आकर उसने पता चला मां बड़ी राजी हो रही के कही अग बेटा तो राजा बन गया, मिला री मां क्या का राजा बन गया तन या के सोची बावली, तो मेरे में राम फर्क मानती है, वह मां तो दौड़ी होगी कि थोड़ा नहीं क्यों कर बोला। ने बोली मां ठीक सा तू मां है मेरे पक्का कुछ नहीं जानता पर तनाज गलती करी भारिया या क्यों कर समझ माए, तू तो मेरे से भी ज्यादा प्यार करती थी राम से, आज तेरे बुद्धि किसने बदल दी? फिर उसके भी ठिकाने बुद्धि आ गई, कहने लगी भाई के बताऊं या तय तो होनी समझ ले, और भी जी मेरा भी घना काल पाया जब वो लड़का यहां से गया पर मेरे तो इस बांदी ने इतने बूंदे वो सुए ला दिए यो जहर उतरा है कौन मेरे दिल में। नो बोला मां तने गलती करी, चलो ठीक से मां है मैं कुछ नहीं कह सकता पर राज मैं भी ना करूं, अग भाई देख ले तेरी मौत कुछ भी कर ले, मेरे से गलती बन गई सो बन गई। इस प्रकार कहते रामचंद्र जी को लेने के लिए गया, कहने लगे भैया मौसी अपनी गलती मानना है और तू वापिस चाल। ने बोला ना भाई और पिताजी के वचन का क्या होगा फिर, चलो मां तो हृदय नरम था गलती से करगी काम पर उस पिताजी के वचन का क्या होगा जो शरीर भी छोड़ गया मेरे नाम पर मर भी गया, मैं नहीं चल सकता माफ करो। तो वापस आ गया, कहने लगे जी अपनी खड़ाऊं दे दो, खड़ाऊं ले आया, कहते हैं गद्दी पर धरके खड़ाऊं और स्वयं राज धरती में लौट कर करा। तो ये आचरण आप करो तो गी पाठ का लाभ से, और ऐसा आचरण आप करनी है भाई पर मुकदमा कर रहे करोड़ी के खड्डे पर ये पाठ करते हो रामायण का तुम कुछ नहीं करते, इस प्रकार ये पाठ कोई लाभ नहीं हो। लेकिन ये जानकारी देता है पाठ कि भी बूंदे काम मत करो, नर्मात्मा जो होगी हर जम जगह बनेगी भगवान के भजने की दुराई त्यागने की। लेकिन ये तो इस प्रकार हो गया भाई धर्म दुआ करण तन जैसे खेत बा दिया खूब उसमें गुड़ाई कर दी घास रहा कोनी और बीज बोया ना तो वो बाया हुआ कुछ काम नहीं आया उसमें घास दामगा। धर्मार्थी पाठ दुआ करते रहे सतनाम आपने मिला नहीं तो भाई वो लाभ नहीं होगा जिसके लिए वह तैयारी कर रहे थे। यही मैं बताऊं धर्मदास रहते हैं। अब यह बात वो भी समझ में आई, पर नाम बिना तो छुटकारा किसी शास्त्र में ना लिख रहा क्या। फिर कहता महाराज जी एक बात से, और यही बताया कि धर्मदास ये तीन लोक जिसमें तू स्वर्ग आदि मेरा जीव रह से ये समाप्त होंगे, ना ब्रह्मा रहे ना विष्णु रहे ना शिव रहे, ये गीता जी में भगवान कृष्ण ने भी साफ लिख रखा है। और तब की तरह हो गए भाई, तब ना ब्रह्मा रहे ना विष्णु रहे और शिव रहे ना जो इसके उपासक कहां रहेंगे, ये लोक नहीं रहे ना स्वर्ग रहे। फिर वहां पर स्तब्ध हो जाता है। फिर कहता महाराज जी एक बात ऐसे, गीता जी का ज्ञान तो क्या भूल जाता है, देखो उसमें कितनी बढ़िया बात बता रखी है। मैं बोला यह भी बताऊंगा समय आने पर, गीता जी के ज्ञान का भी भेद खोलूंगा तेरे तय। इतना कह के उन्हें सोची यू काल इसका पीछा छोड़ता कोई ना। अरे एक बात खास होती है, आप प्यारा आदमी दोहरे रहे आ रो उसमें उतना प्रेम रहे को ना, हर एक बहुत लादत है मीने ना आवे, उसके अवगुण भी गुणों में बदल जाते हैं। विदेश में जो प्यारा बच्चा अपना चला जा चाहे वो रोज लड़ता हो और फिर इतना प्यारा लागे कद सी आवे छुट्टी। तो जब वो महाराज अंतर्जान हो गए तो धर्मदास रोन लाग गया और कंधा चाड़ा पाट दिया, महाराज जी फिर अंतर्जान हो गए तो वो थे किरा जो पहले मिले थे, ओए हो रूप बदल के आए थे। अब ना तो तीर्थ करण जोगा रहा, मथुरा से फिर जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं बरसाने में। बरसाने में कौन है, कहते हैं वहां की राधा हुई थी। राधा भगवान कृष्ण की बहुत प्रेमिका थी, यानी उससे पूरी आश्रित थी। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा के वश में रहता था। बरसाने के लोग क्या करते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे, वो राम का नाम भी लेते ना कृष्ण जी का। बरसाने के लोग कहते हैं राम राम, जैसे हम राम राम कहते हैं ना, या हम सत्साहेब कहते हैं, आप लोग राम राम कहते हो, तो वो कहते हैं, वहां कहते हैं राधे राधे, तो वो कहेगा चाचा राधे राधे, वो कहेगा राधे राधे भाई राधे राधे, वो राम का नाम भी ना लेते। क्यों, क्योंकि उस लड़की को वो भगवान कृष्ण का सबसे नियरेस्ट नुमाइंदा मानते हैं कि हमें भगवान कृष्ण से मिला देगी। तो महाराज कहते हैं जब वह लड़की कृष्ण से मिलने जाती थी वही वृंदावन बरसाने के लोग उसको वैसा कहते थे, उसको उल्टा कहते थे। और इब उसको पता चला कि बाद में कि कृष्ण तो भगवान था और राधा जो है वो एक हंस आत्मा थी स्वर्ग से आई हुई। इब राधा कृष्ण परमात्मा हो गए। और समय था जब उसको गाली दिया करते, गुंडा है ये तो औरतों में नाचस है, क्यों उनके गिल लड़ने क्यों आते थे वो राजा लोग, उनके इसी आचरण को देख कर भगवान कृष्ण ने अपनी जान बचाने की खातिर द्वारका बनानी पड़ी वहां जाकर रहे। तो वहां से वो अंतर ध्यान हो गया तो कहते हैं रोदन मचावन लग गया, वापस चल पड़ा वहां से, बांधोगढ़ तक रोता हुआ चला गया, वापस अपने घर न चला गया। अब जाकर उसकी पत्नी सेठानी ने देखा कि सेठ जी तो उल्टा आ गया, इसने आना था 6 महीने में और यू आ गया महीने भीतर, और भीतर बढ़कर अपनी कुटिया में मकान के अंदर और बहुत बुरी तरह रोया। सेठानी ने सोचा कि भाई रास्ते में गंदे रास्ते थे, हो सकता किसी ने इसका कि मैं सामान ना लूट लिया हो, भाई पैसे ना निकल गए हो और गया को नहीं इसलिए वापस आ गया। धर्मदास रो है पढ़कर बहुत बुरी तरह, जिसका कितना बताऊं कि इतनी आघात हो जाए जो कति प्रेमी आदमी मर जा, घर का सदस्य फिर उसके लिए तड़प तड़प कर पांव पीट पीट कर टक्कर मार मार कर धर्मदास रो रहा है और बोल नहीं निकलता उसका। आमनी उनकी पत्नी धर्मपत्नी सेठानी कहती है कि महाराज भगत जी बात सुनो, क्यों रो रहे हो। उसने सोचा धन निकल गया कि तो चोरी हो गया, और भाई गुंडा ने भाई कि मैं कैसे सुन दिया होगा रास्ते में, कहने लगे तो नो ना रोए सेठ हो के, पैसे की थारा कमी है कि मैं और ले जाना है, और पैसे अपने से बने हैं हम पैसे से नहीं, पैसे ना रो तुम। अब उसने सोचा बावड़ी के जाने मेरे दर्द ने, हिम्मत करके कहने लगा आमनी मैं धन ना रोता, एक अनमोल धन मेरे हाथ से निकल गया उसको रो रहा हूं। अकवो के था ऐसा, कहते हैं ऐसे शिष्य में भगवान आए थे, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष आए थे और उन्होंने एक ऐसी मार्ग बताया मेरे को, मेरी बात तो समझ में आएगी। कहते हैं हमने कितने युग हो गए यहीं पर चक्कर काटते, और सुरत की साधना हम करते हैं फिर नरक में आ जाते हैं। हाँ जी, ये तो फिर सारे शास्त्र हम लिख रहा क्या कि वह भी बहुत विद्वान थी, आस्था भगवान में बहुत ज्यादा थी, तो वो क्या बताओ थे कि ऐसे महात्मा परमात्मा आए थे स्वरूप ईश्वर का। उन्होंने बताया कि एक सतलोक है और वहां पर जब हम चले जाओ दोबारा कौन मरे, दोबारा 84 में नहीं आना पड़े, असंख्य स्वर्गों से भी ज्यादा वहां पर सुख बताया। तो कहने लगी तो लाला जी होकर सौदा चूक गया, चूक क्या तो ना करते नहीं, बोला पहली बार धोखा खा सठानी मना, आज तक मन धोखा नहीं खाया था। इन्हें बोली फिर के बनाए अकबसीब तो मरे पांडा छूटेगा ना, तो गीता पढ़न न जी करता, क्योंकि वो गीता के पाठ से केवल जानकारी होती है, अंत तक नरम हो गया और वो छक्का करे लिया हमने 40 साल 60 साल हो गए गीता पढ़ते आने, और इसमें जब बीज सतनाम का ना बोया तो सेठानी मेरा यो शरीर किसका काम नहीं है। तो क्या हुआ, 6 महीने तक रोए रोए और डटे को ना, आंख लाल होगी, सूख का कति लाकड़ी सा हो गया। सेठानी बोली तू तो सेठ मरेगा ही, अगर मरूं चाहे जीऊं पर मेरा इस संसार में जी लागता कोई ना। तो वो कहने लगा कि मैं समाधान तो बता फिर, कुछ तो संतों ने कहा होगा कब मिलेंगे। अब उसको वो प्रेरणा बंदी छोड़ने दी, जब दसो दिए नहीं आने दी, क्यों इतना उन वियोग क्यों दिया कि और निर्मलता आएगी हृदय में, कति साफ हो गया, कमल जैसा कोमल हृदय हो गया उसका। तो कहने लगे एक दिन नो तो कह रहे थे कोई धर्म का काम करते हो ना जो मैं जरूर आ जाता हूं, तेनों पर इस धन के करांगे इतने का, अब तू मर गया तो इस धन में के करूंगी, तू धर्म करना शुरू कर दे, ते सारे ने लुटा दे पर तेरी जान बचो और वो परमात्मा के प्यारे हंस में फिर मिलो। तो ऐसा धर्म का यज्ञ कहते खूब सारे का ढिंडोरा पिटवा दिया कि धर्मदास यज्ञ कर रहा है, लाखों आदमी रोज खाना खा कर जा रहे। आखिरी दिन हो गया उस समागम का, पर वो बंदी छोड़ नहीं पहुंचे सतपुरुष कबीर साहब। धर्मदास उनको विदा करता था साथ में, क्या करता था, एक तो बहुत बढ़िया दौर यानी बहुत बढ़िया चदर और साथ में असर पी चार और रोटी खा के उसी, चाहे को ब्राह्मण आवे चाहे बिना ब्राह्मण आवे, चाहे संत आवे चाहे बिना संत आवे, सबको ऐसे लुटा रहा अपने धन को, क्या करूंगा इस धन का जो यहाँ पर 24 करा कई बार हमने यहाँ पर कुत्ते की दुनिया पा ली, उसके नाम पर जान भी दे दो तो भी थोड़ी है। तो जी जब आखिरी दिन हो गया और केवल 10 भक्त आत्मा उसने विदा करने बाकी रह गए, तन्यो बोला महाराज जी कहता दर्शन दे दियो ना कुएं पड़कर मरूंगा, बस ही आखिरी सांस था मेरे। जब इतनी उसकी कुर्बानी देखी तो बंदी छोड़ कबीर साहब इतनी दूर एक वृक्ष था वहां से लगभग 1 किला दूरी पे और उसी जिंदे के रूप में वहां बैठ गया आके। धर्मदास देखा था चारों तरफ, नो देखा इधर देखा और उन संता का नहीं देखा कि मतना सेवक दे रहे बदल के आए गए, इतना देखा है कि वहां दिखा। अब आम नहीं बुलाई जल्दी आ, बाकी महापुरुषों ने फटाफट तू तो विदा कर मैं जाते महाराज जी के पास, मैं देख के आता हूं। सोची कि दूर से था वो दिखाई नहीं दे रहे थे साफ, जाके देखे ये तो महाराज जी ऐसे पड़का चरणा में बेहोश हो गया, कति इतनी बुरी तरह रोया है महाराज जी, इतनी कली परीक्षा लिया कर मैं तो मर गया था। नो बोला धर्मदास न्यो बिना तरान दे रहा ना हटाओ, तो मैंने बेवकूफ समझ रहा था कोई बांडा से के जाना यो भक्ति मार्ग का, अग जी कुछ भी कहो पर इतनी सजा नहीं देनी थी महाराज जी। आप ही बना जो बोला धर्मदास तू जा जल्दी इनको नमेड़ के आश्रय संतों को भेज दे। जो बोला महाराज जी जाइयो मत ना, मैं तो मर जाऊंगा कतियाले कुएं में पड़ जाऊंगा, जाप चले गए अग मैं जान की खातर आया उसे, चल जा बैठा। उसने जाकर सबको विदा कर दिया, महाराज जी को घर ले गए। जो बोला अमनी देवी आ गए भगवान घर में, एक पैर ने वो पकड़ गया पकड़ कर बैठ गया, एक ने अमनी देवी, और काफी देर तक महाराज उनकी आंखें मत पानी आप पड़े। फिर बंदी छोड़ने वो मार्गदर्शन किया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा का मार्ग मैं बताता हूं। वही धर्मदास पूर्ण परमात्मा का प्यारा हंस हुआ, आज भी उनकी वंशज वहां पर सतगुरु कबीर साहब के मार्ग का पूर्ण रूप से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि धरती पर कोई परमात्मा है तो बंदी छोड़ कबीर साहब है। बोल सतगुरुदेव। कहते हैं लिखा इसमें इतनी कह के साहेब कबीर अंतर ध्यान होया जी, अपनी अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी, और भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं, रो रो रोदन मचावन लागया एक धर्म यज्ञ रचाई जी, और दीन दयाल दया के सागर आके सूरज दिखाई जी, रामपाल तब मुक्ति पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं। तो अब वो धर्मदास कहता है महाराज जी एक बात तो सामने गुरु बना रखा पहले कौन के रूपदास जी। तो भाई के बताऊं फिर मैं, वो जैसे एक टीचर होता ना, एक तो दसवीं तक पढ़ावे, एक जेबी टीतई का मार्गदर्शन करता है। तो भाई ये जो आपको ज्ञान दिया तीन लोग तई की मार्ग उन्हें ठीक बताया, यही विधि है यहाँ की, उन्हें गलत नहीं बता रखा, पर बेटा इस तक काम ना चले। अब ये स्कूल तेना छोड़ना पड़ेगा या तेरी भक्ति पूरी होली, अब दसवीं कर ली तो बीए कर और पीएचडी कर, चल अपनी पा मुक्ति। अच्छा महाराज जी, फिर भी डर लागे कदे गुरु जी वो पछले नाराज हो जाए। अक महाराज जी वो गुरु छोड़ने दे कि मैं नुकसान तो नहीं हो जा। भाई नुकसान जब होता है जब आपको आगे का मार्ग ना मिलता हो। तो वो चला कहने लगे जी ठीक से मैं गुरु जी पूछा एक बार। अकाछा बाबू जा तू ना मानता, लेकिन वो रूपदास बहुत विद्वान पुरुष थे। धर्मदास ने जाकर पूछ बताया महाराज जी नो बताओ है सतलोक भी से एक स्वर्ग तो ऊपर है। रूपदास बोला भाई धर्मदास बात सुन ले, मुझे नहीं ज्ञान कती और जितना मुझे ज्ञान था मैंने बता दिया और यही मार्ग है यहां का। तो और अगर तुझे कोई ऐसा महापुरुष ऊपर का मिलता है तो मैं कति दुखी नहीं। काली ना मानिए बेटा, कदे ने सोचा महाराज जी नाराज हो जाएंगे, पर मेरी साधना ही बने कोई ना। तो चावत है नोक महाराज जी भी आ जाए इस बात पर सुन ले तो एक बार आप चर्चा कर लो जी। अगना भाई इब चर्चा का मेरा ब्यों तो नहीं दे रहा, मैं तो 70-80 साल का हो लिया, मरण न हो रहा तुम। अब जैसे देखी जाएगी, पर तेरे बनता तो बेसक अपना कर ले जाके। तो ऐसा गुरु शायद ही कोई मिलेगा, ये भी उसके 16 दिन थे ऐसे महापुरुष से वो पहले मिला हुआ था। तो वहां जाकर उन्होंने कहने लगे महाराज जी वो तो न्यू बोले, अब ठीक है भाई बड़ी अच्छी आत्मा हुआ तो जिन्होंने सच्चाई बता दी ना, तो उड़ जानी है बहुतों से और 36 पंगे पाओ तेरी जान केले रास वो इस तो ऊपर की तो सुनाया कोई ना, इस प्रकार आपने नरक में ले जाओ। अगजी दे दो नाम, तो आमनी देवी ने और सेठ धर्मदास जी ने दोनों ने नाम लिया, उनका बेड़ा पार हुआ। बोल सतगुरुदेव। इस प्रकार अब हम आपको बताते हैं कि बंदी छोड़ भगवान धर्मदास बोला महाराज जी आप क्यों कर आए यहां पर इसे गंदे लोक में, फिर क्यों आए महाराज जी। अक भाई इस काल ने ये जीव गणे दुखी कर रखे हैं, इब तो इन बकाए बैठा थरे बेटा बेटी ज्यादा दौलाद है और फिर एक सेकंड में खत्म कर दे, कि तो एक्सीडेंट का बहाना बनावे, कि तो बीमारी का, कि तो बर्ड फ्लड आ जाएगी है, कि तो भूकंप आगा देश का देश मर जाएगा। सांझ ने सोए थे आराम से, तुर्की के अंदर बताते हैं बहुत भयंकर भूकंप आ गया, भूकंप कितना आ गया भाई वो, और पहले कोई नहीं आया। आप पे सारा खेल निरंजन कर रहा है और वहीं से अपनी एक शक्ति अंदर इधर गुप्त छोड़ देता है और वो धरती पाट जाती है, हल जाती है सारी और वहां पर कितने जीव मर जाते हैं। तो सवेरे उठे तो वहां पर हाहाकार मची हुई, कुणबा की कुणबा गाणी होगी, कोई तो ब्याह की तैयारी कर रहा होगा और किसी की नौकरी लागी होगी, किसी की शादी हुई होगी, किसी ने फैक्ट्री लानी होगी और सुबेरा कुणबा गाणी होगी। तो बंदी छोड़ के भाई यू काल यू तमाशे कर रहा थारी गेल, असकों बार मार लिए, असकों बार पैदा कर लिए और यो जन्म मरण मिटा कोई नहीं। आज हम सुख समझ रहे हैं अपने घर को, बढ़िया कोठी है उसमें भाई सारी व्यवस्था है, और कल मर जावा कुत्ता बनकर उसकी छाया में बैठन न तरसांगे, ये क्या फायदा हुआ, ये तो धोखा कर रखा तुम्हारे साथ। जब इस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि धर्मदास मैं बताऊं भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश बेचारे लाचार से निरंजन का आगे और मेरे साथ आगे यू निरंजन ऐसे हो ले जैसे शेर का आगे यू बकरा बाजा करे, मेरे सामने नहीं रुक सकता है निरंजन क्योंकि ये हमारे से बहुत छोटी शक्ति है। तो कहने लगे महाराज आप क्यों कर आए, कहने लगे भाई कबीर साहब बोले कि मैं न्यू आया, ये तपस्या के ऊपर जो हाहाकार मचा है ना इन प्राणियों का, या तो कुछ भी दुख हो ना, जब उस तपस्या के ऊपर सूक्ष्म शरीर में इस जीव ने ये भूना है, वहां पर इतनी बुरी रोए है ये आत्मा कि हाहाकार ये मेरी छाती में टक्कर मारे साके इसकी आप पुकार। और धर्मदास मैं इन अज्ञानी जीवों को ये मार्गदर्शन करने आया हूं कि ये भगवान नहीं सब आई, ये निरंजन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें ये काल है और इन धोखा दे रखा आपके साथ में, और मेरी साधना करो देखो इस काल को और किस प्रकार तुम्हारे ऊपर ये दुखी करता, तुम्हें यह सुख ज्यादा दूंगा और साथ में तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसे ऐसे प्रमाण आपको बता दें कि आप हैरान रह जाओ, कैसे फिर रक्षा करता बंदी छोड़ हमारे बच्चों की। ایک جیند کے اندر ایک چھارا کی لڑکی بی بی پر بیاہ رکھی ہے، بس جیند کوٹھی بنا رکھی، وہاں رہتے ہیں. اس کا نام کسم ہے. اس کی بڑی لڑکی 9 برس کی تھی اس میں جب نام لیا، اب تو وہ 13-14 سال کی ہو رہی ہے. اس نے نام لیا ہی تھا، 96 کی بات ہے، نام لے رکھا تھا اس نے 96 میں. اس میں جب یہاں بہادر گڑھ کے اندر 8-9 سال کی لڑکی کنیاؤں کو اٹھا کر مار دیا جاتا تھا نیچوں دوارا، اس سمے کی بات ہے. وہ لڑکی سکول سے آ رہی تھی، اس لڑکی کا نام ہے رینو. وہ سکول سے آ رہی تھی تو جب وہ گھر پہنچی تو ایک ورد اس کو لے کر کے لڑکی کو اور کہتا ہے کہ جا بیٹی یہ تمہارا گھر ہے. جب اندر وہ لے کر گئی تو اس کی ماں نکلی باہر، اس میں اس کی ماں نے بتایا کہ جی میں دیکھوں تو ایک بوڑھا کھڑا سامنے اور لڑکی ایسے ہاتھ لگا رہی ہے یوں دوارا. میں لڑکی کا نہیں دیکھنے لگی، تیرا کی ہوگی رینو؟ اتنے میں دیکھا تو وہ پرش آدمی جیسے وہاں دھرتی میں سما گیا، ہو تاڑی سی والا بوڑھا دکھا تھا، من دکھائیے نہیں دیا. باہر نکلی، دور تک دیکھا، کچھ بھی کون پایا. وہ چھوڑی 2 گھنٹے میں اس میں آئی، میں پوچھا تیرا کی ہو گیا؟ ماں میں ایسے آ رہی تھی ممی راستے میں، ایک انکل آیا، آ کے میرے ہاتھ پہ شرپا در کہنے بولا کس کی سے تم؟ چل میں تیرے گھر چھوڑ کے آؤں. منہ پر کات پھیر دیا، میرے چکر آنے لگ گئے اور باں پکڑ دی اس نے میری. تو اتنے میں ایک بزرگ آیا، ویرانی کون تھا، وہ کہنے لگا کون ہے تم میری لڑکی کو لے جا رہا؟ تو کہنے دے وہ بولا اس کا تکلیف سے ہو رہی تھی من درد، اس لیے بازو پکڑ رہا. کس کی؟ آپ کی. تو لے جاؤ گھر لے جی اس کو. یوں کہہ کے بولا جی وہ تو چلا گیا. وہ ورد مجھے لے کر کے یہاں لے آیا ممی. وہ کون تھے؟ وہ بندی چھوڑ بھگوان کبیر صاحب تھے. بول ست گرو دیو. اس لڑکی نے کو 20 جگہ ستسنگ کے اندر بتایا کہ ایسے ایسے یہ رکشا کرتے، اور اس لڑکی نے بھی نام لے رکھا تھا اور اس کی ماں نے بھی نام لے رکھا تھا. تو اس لیے نام ہمارا رکشا کوچ بھی بنتا ہے. یہ بندی چھوڑ اس کال سے ہم نے نیو بتاؤ بھائی، تو اس لیے اس کی سرد مارنے سے جیو کا چھٹکارا ہوتا. کہتے ہیں بھائی مہاراج بولے کبیر صاحب کہ دھرمداس میں کیوں کر آیا بھی آ کہانی سن لے. جب تبت سلا پہ عجیب دڑے تھے 1 لاکھ کی گانی کال روز گال دیس ہے، اور اس کے نرندن کے لوک میں ایک پتھر کی ٹکڑی بہت سندر ایسی بڑھیا بنی ہوئی ہے جیسے تئی سی بن جایا کرے، اور اتنی گرم ہے ہوا، اور اس میں نیچے ایک سوراخ ہے بیچ میں کتی تلے ایٹومیٹک، اس کی پوری گانی وجہ سے کوکر ہے آپ پہ سیٹی مارے. تو اس پرکار وہ ایٹومیٹک جب وہ کتی سارا نچوڑ ہولے سے اس واسنا کا، 1 لاکھ جیووں کے سوکشم شریر میں سے وہ میل نکالا سے گند، جو واسنا ہم کرتے ہیں یہاں پہ، جو دارو پیوے بیڑی پیوے گندے کرم کریں، ان سب کی واسنا وہ وہاں پر سوکشم شریر پر جمع کر کے وہاں نکال لیتا ہے. اور جب وہ نکل کر نیچے چلی جاتی ہے ان جیووں کو ایک دم وہ شلا پر سے ایسا دھٹکا ملتا ہے وہ سارے آکاش میں اڑ جاتے ہیں. وہاں سے پھر آ کر ٹھنڈے واتاورن میں سے ان کو شریر چیتن ہو جاتا ہے، پر یاداشت گم ہو جائے تم کہاں تھے کون تھے. نیچے آ کے دھرمراج کے پاس وہ لیکھا کرواتے ہیں، یہ دکھ نارا ہے کرم کی مار نیاری سے. پھر دھرمراج ان کا لیکھا بتاتا ہے کہ تیرے اتنے پاپ سے اتنے پن ہیں، اتنے لیے سورگ میں ہوگا، اتنے دن تو نرک بھوگے گا، اس کے بعد کتے کی دنیا میں جائے گا، یہ دکھ بار تھارے اوپر نیارا رہ رہا سے. تو جب وہ جی وہاں پر دکھ پا رہے تھے تو دھرمداس میں چلا وہاں سے، اور میں آ کے اب دھرمداس کو نوکو ہے کہ میں آیا، تو دھرمداس کے پھر بدھی بدل جا. جو بولا دھرمداس میرے کو ست پرش نے بھیجا بھائی، یہاں پر تھوڑا سا مہاراج نے فرق کر لیا، کیونکہ ہم اسے پرانی ہیں ایو کوئی نو کہہ دینا پرماتما خود آ کے اور آدمی کے روپ میں نیو کہ میں بھگوان سو کتی نہیں مانا ہمیں نو کہ نا بھگوان ایسا کیوں کرو گا، روٹی بھی کھاوا ہے، یہ تو جاؤں بھی سے پیدل بھی چل رہے ہیں. ہم وہیں پر ستر ہو جاتی ہماری بدھی. تو کبیر صاحب کہنے لگے پرماتما ست پرش نے بھائی دھرمداس میں بھیجا یہاں پہ، اور ایک شبد کی شکتی دے دی ستنام کی سار نام کی، کہ اس کے آگے کال ڈٹ ہے کوئی نہ، اس کا نام جپتے رہیو. جب میں آ کے ان تپت شلا پہ دکھی جیووں کے پاس کھڑا ہوا تو میری شیتل تاتیں ان کی جلن ختم ہوگی، وہ درد جو پیڑا ہو رہی تھی وہ نہیں رہی. وہ نوکی نو جل رہی ہے، تپت شلا نوکی نو گرم ہے، پر وہ پرانی اتنے ہو گئے جیسے برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے اور بیٹھے ہو گئے. اور جب سامنے دیکھا شریر میں کوئی دکھ نہیں، اب جیسے میرے سر میں درد ہو رہا ہو اور کتنا پیارا آدمی بولا بولنا نہ جی نہ کرے, اور جب ایک گولی لے لوں اور آرام ہو جا اتنا بڑی اتریاں بولوں گا, کوئی کس میں آیا بھائی, ٹھیک سو عورت ہے. اسی پرکار جب وہ دکھی تھے وہ کت کے بولنے تھے, اور جب وہ سکھی ہوئے ایک دم سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہنے لگے کون ہو مہاراج جی آپ, اے بندی چھوڑ, اے بھگوان ہم کیوں دکھی ہو رہے تھے یہاں پہ, کون سی سزا بھوگ رہے ہم. کہنے لگے بھائی بتاؤں تھارے تائیں, اکان جی بتاؤ, یہ جو جس کو تم بھجن کرتے تھے نا, جو سادھنا تم کرتے تھے, جس کو تم پرماتما مانتے تھے, وہ پرماتما تم نے یہاں دکھی نہیں کر رہا بھائی, اور اس کے بعد تمہیں گدھے بناؤ گا, گدھی بناؤ گا, کتے اور کتیا بناؤ گا, یہ دکھ بھائی نارا اور رہ رہا ہے. انہیں بولے مہاراج ہم کیوں پھنسے یہاں پر, ہمیں نے چھٹوا دو اس نے کاٹتے ہیں. انہیں بولا بھائی بات سنو, اس نے ہمارے سے وطن بد ہو رہا, تم اس کے اس کے میں وطن بد ہو گیا, اس نے وطن لے لیا میرے سے کال نے. کیا کہا کہ مہاراج جی دھکا نہ کریو, اپنا گیان دے کا اپنے جیون کتنا انسل جا لیو. اور بھائی جب تم نے منو شریر پراپت ہو جا مرت منڈل میں جا کے, اس مرت لوک میں آ کر جس نے مانو شریر پراپت ہو جائے استری یا پروش کا, اور کوئی میرا نمائندہ سنت یہ مارگ درشن کرنا آوے, اپنا چپ چاپ نام لے لیو, گنے وکیل متنا بنی ہو. نہیں بولے مہاراج جی عیب کا جب منو شریر مل گیا نا, ہم تو بھول رہے ہیں کوئی نہ, آندے کال پھر وہ پڑھائی پڑھائی جیسا ہندو کے پیدا ہو گئے, ہندو والے شاستر نو کے نو دچ گئے مسلمان کا, آج ہم ہندو ہیں کیا کل مسلمان نہیں بن سکتے آپ لوگ, دیو دیوتا نے گلے لے جاؤں گے کیا, ہم اڑال لار خدار بکری کاٹ کے کھاؤ مرغے کاٹو. تو یہ مہاراج کہیں کہ اس نرنجن کی ساری پرتھوی ہے, نہ کوئی مسلمان بھن ہے کوئی, نہ ہندو ناراض ہے, آپ ہندو بن رہے سا آپ مسلمان بن گئے, آپ عیسائی بن گئے, اور آپ ہم نے نیارا سکھ دھرم بنا لیا. اس بھگوان کے گھر میں نہ ذات نیاری نہ کوئی مذہب نیارا, ہماری مانو جاتی ہے, یہ لکھ چوراسی کے اندر آتے ہیں. تو کہتے ہیں مرت منڈل دھارو جگ دیہ نر دیہا, اور تب تم کرنا میرے سبد سنیہا, تب میری اس بات پہ وشواس کر لیو, پھر میں جانوں اور میرا کام جانے, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیسے کال نزدیک آتا. اتنی بات ستگرو مہاراج کر ہی رہے تھے, ادھر سے نرنجن کا کھانے کا سمے ہو گیا, اس نے سوچا وہ جیو تو جالیے ہوں گے, کیوں نہ دیکھے بھی کون آنے دیکھ جائے اس کا بانڈا پھوٹے, اس نے دیکھا وہ جالیے ہوں گے, اور چل ہی اپنا بھوجن چلتے ہیں. آ کے دیکھا وہاں بندی چھوڑ کھڑے ستپرس, اور کہتے ہیں دھرمداس میرے کو دیکھ کے نرنجن ایک دم غصہ ہو گیا, کیونکہ میں نے سہج داس کا روپ بنا لیا وہاں پہ. تو دھرمداس نے بولا, نرنجن کہنے لگا سہج داس آج ٹھہ گیا تو میرے لوک میں کیوں آیا پہلے تو نہیں بتا. اب کہتے ہیں جھوٹے نے جھوٹے کی, جھوٹے نے اپنی ہد باندھ رکھی ہے بھینسے نے, اور بھائی کتے نے اپنا گلی میں ہد باندھ رکھی, دوسرا کتا جا لڑ جا مر جا بگن تیر دے, تو نیو نرنجن نے اپنی ہد باندھ رکھی ہے, لیکن تگڑے کاگے کو نہ ڈٹائیو, یا حد اتنے ہے اتنے ٹھا ڈانا ٹکرتا. کہتے ہیں ایک جوڑ میں ہاتھی نہ آو تھا, ہاتھی سنان کر رہا تھا اور زیادہ گہرا جوڑ تھا, جھوٹا آ گیا وہاں پہ, جھوٹے نے سوچا تیرے راج مری ہاتھی کتا یہ نہ جھوٹا کتا آ گیا دوسرا, کیوں اس کی تھوڑی سی کڑ دیکھے تھی اوپر تے, اور سارا وہ مستی میں بھیتر بڑھ رہا تھا اور سونڈ موڑا سا اوپر نو کر رہا تھا. اس نے سوچا یہ جھوٹا دوسرے کی مت کے اوپر پڑ گئی میرے جوڑ مان کی, اور جھوٹا نے وہ کہیں کتی سو کی سپیڈ پہ چلا اس ہاتھی کا نہیں, اکی ماروں اس نے توڑ دوں دے ہی کہتے ہاتھی نے دیکھا یوں آن لگ رہا تیرے کا نہیں, اس نے سونڈ پانی کا اوپر رکھا تو ایک بار اس کا منہ مارا پھر, اور پھر وہ سارا باہر نکلا نا چوٹن دیکھا اس کی ٹانک ٹھہر گئی اتنی سپیڈ تو الٹا باز لیا نوکن دس کلو میٹر جا کے پاسا دیکھا انہیں, تو وہ تگڑے کا گاڑنے میں بڑے سے. تو کہتے کبیر صاحب آئے تو سہج داس وہ نرنجن اور کبیر صاحب روپیہ ہاتھی کا اوپر نے جپٹا جو کر جوٹا جپٹا تھا, تو کبیر صاحب نے بولا جو سہج داس تین جان تو ماروں گا آج ٹھہ گیا تم ایک لامے رہے, وہاں سے تو تین میرے کو مار کوٹ کے کاٹ دیا تھا, ارے تم میرے لوک میں آیا کیوں. تو کہتے میں نے وہ شبد کی شکتی چھوڑی دھرمداس یہ بے ہوش ہو گیا اور تڑپن لا گیا جیسے پکسی کی پانکھ کٹ جایا کریں, اور بسا وہ کچھ نہ تڑپ تڑپ کر جب کتی تنگ پا لیا نا, جب اس میں ایک چاپلوسی ہو رہے ہیں جب نو دیکھا نا یہ ٹھاڈا ٹکرا گیا تو انہوں کے پاؤں اور پکڑ دیے میرے آ کے تلے تلے سرک سرک کہنے بولے مہاراج جی منو بخش دو, میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ میرے بڑے بھائی, اور بالک تو غلطی کریا کریں سے आका अच्छा माफ कर दिया, पैर पकड़ कर छोड़े नहीं, रोएगा नहीं, बोला जी एक दो एक बात कमी और रह रही से मेरे यहां पर, वो पूरी और कर दो, आप तो दाता हो परवरदिगार हो। धर्मदास इसने फेर ठग लिया, मैं मन दया आगे का था, मांग निर्वाह के मांगे से और ले ले, तू तेरा पेटा ना भरे। ने बोला जी एक काम करना, क्या आप कहां जाओगे? कि मृत मंडल में जाऊंगा, तेरा बांडा फोड़ूंगा। तो नकली भगवान बना बैठा, अरसली परमात्मा सतपुरुष ने बुला रखा। ने बोला जी फिर ये जीव सारे चले जाएंगे तो मैं रोटी के ऊपर खाऊंगा, महाराज जी वचन भरवा लिए पहले कि मैं फिर अपना पेट के ऊपर भरूंगा। एक काम करना, क्या कि तीन युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और जब यो कलयुग आओ महाराज जी तो कितने ले जाइयो, क्यों काल स्याणा था उसने न्यू बेरा था कि कलयुग में यो प्राणी भक्ति करने दोगा रहो को ना, दारू बीड़ी शराब टेलीविजन ताश नंदा चुगली राजनीति सांसे को नहीं आओ, इसने देखा क्यों कर ले जाएगा। बंदी छोड़ने बोले जिसने धर्मदास मेरी बात का बेरा पट गया, वो छुआ भी कोई ना इस बीमारी ने, ना दारू पीवे ना शराब पीवे ना सिनेमा देखे, उसने तो मैं दिखूंगा दिन रात भाई। फिर ने बोला जी एक काम और करियो, क्या के समुद्र पे त्रेता युग में विष्णु अवतार यानी मेरा ही अंश राम रूप में लंका पे चढ़ाई करेगा और लंका पे पुल नहीं बंधेगा, महाराज जी वो पुल और बंधवाइयो। आका अच्छा भाई। दूसरा फिर क्या कहा कि जगन्नाथ का मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, क्योंकि समुद्र से जबरदस्ती रास्ता राम मांगेगा और उसका प्रतिफल वो समुद्र इतना लेगा कि जगन्नाथ के मंदिर ने बनन नहीं देगा, वो आप कृपा करियो। अच्छा यह भी कर दूंगा। और बोले अकबर ही बाप कितने जाओ, कहां जाओगे? कि मैं जाऊंगा मृतमंडल में, संसार सागर में जाऊंगा नीचे, और सब जीवों को अपना ज्ञान दे के आऊंगा। ने बोले जी आप जाओगे ना जब, और ने बोले कभी मैं जाऊंगा कभी अपना संत भेजूंगा, आप और आपके संत जाएंगे इतने तो मैं सारे ज्ञान खराब कर पाऊंगा, एक शास्त्र भी ठीक ढंग का नहीं होगा, एक दूसरे से कोई सा मेल नहीं खाओगा, 68 तीर्थ बनवा दूंगा, ये भ्रमते भटकते अंडे जाएंगे, और आपकी बात को एक नहीं स्वीकार करे और 12 पंथ नकली चलाऊंगा, आपकी महिमा गाया करेंगे, पर यू नाम नहीं होगा जो आप दोगे, और इस बिना छुटकारा हो क्यों ना ते वह लाख वर्ष जाप कर लियो। तो बोला धर्मदास एक कहते निरंजन मन जा लेने दे, एक बार उनके इतना सुख दूंगा तने भूल जाएंगे भाई, सपने में भी याद कौन करे तुझे, आज प्राणी ऊपर तो सुखी दिखे पर दुख का ढेर लाग रहा था उनके घर में, और बंदी छोड़ की कृपा से सुख का लहर आ जाती है, समुन्द्र हो जाता है सुख का, जिस घर में मालिक कबीर साहब का नाम हो जाता है। तो वहां से कबीर साहब आकर के चारों युग में कबीर साहब आए हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। त्रेता में जब आए मंदोदरी ने स्वयं नाम लिया था मुनिंदर साहब से, और रावण को भी बहुत समझा था मंदोदरी ने, आप रामायण में भी देखना मंदोदरी कितना ज्ञान देती है उसको, उसको कहां से आ गई ये बातें, वो कबीर साहब की गुरुमुख हो रही थी, वो मुनिंदर साहब की शिष्या थी। तो इस प्रकार कबीर साहब अभी कलयुग में आए हैं, अब यहां का दृष्टांत आपको शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो सतयुग त्रेतर द्वापर की तो आपने बेरा नहीं, ना आपका तसल्ली हो है कि आए होंगे और कोई ऐसी महिमा भी दिखाई होगी। अब साढ़े कुल 601 वर्ष हुए कबीर साहब ने प्रगट हुए और 120 वर्ष रहकर वो चले गए थे, 480 वर्ष पुरानी कथाएं आपको अभी सुनाऊंगा, और आपको पेटा भरेगा, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे के बंदी छोड़ भगवान ने के काम करके दिखाए और किस प्रकार दुनिया को सुख दिया था। आज से 550 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य थे कबीर साहब के, 64 लाख शिष्य, और 550 वर्ष पहले हिंदुस्तान की के आबादी होगी 4 करोड़ मुश्किल से, 4 करोड़ होगी मुश्किल से, और उसमें 64 लाख शिष्य हो गए थे। उसकी महिमा आप दोपहर के बाद शुरू करेंगे कबीर साहब की कि किस प्रकार उन्होंने आके और कैसे कैसे चमत्कार किए। सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह था और उसका जलन का रोग था, वो बंदी छोड़ने दूर किया, जबकि सारा एंडलिया था देवी देवता पूज लिए थे और अपने भी जो मुसलमान धर्म के जितने भी उत्साधन थे सारे कर लिए थे, वैद भी बुला लिए थे जो एक से एक अंडी वैद, वैदों को कह दिया था कि जो मुंह मांगा धन दे दूंगा पर मेरी बीमारी ठीक कर दो, पर कर्म जब बढ़ जाए ना पाप कर्म दुआई भी निष्क्रिय हो जाती है या रिएक्शन करने लग जाएगी, तो संतों की कृपा से वही दुआई माफिक हो जाती है या वो अपनी शक्ति तो उन्हें ठीक कर दिया करते हैं। इसलिए अभी दोपहर बाद आपको फिर सत्संग सुनने को मिलेगा। बोल सत गुरुदेव की, सत साहिब। अब सत एक
धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वा। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने रे। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ में रहे नल नील जतन करे आर तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन करे आर तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे का लखी अपार सिंधु पैसला तराणे जा सतरे का लखी अपार सिंधु पैसला तेरा। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने अरे। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत दसी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलांडसी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती अकुला आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनाने। आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनाने। अरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत अरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा आले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़। दामोदर सेठ के होवत अकाज अरज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत अरज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखी ओ गरीब नवाज समुंदर से पार लंघाने। लाज मेरी रखी ओ गरीब नवाज समुंदर से पार लंघाने।